भागवत सार की श्रृंखला में चौथा स्कंद 13वें अध्याय पर चर्चा है। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, कृपया श्लोक दोहराइए। सुत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम्। प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरा प्रचक्रमे। सुत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम्। प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। सुत उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम्। प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे।
Thank you.
सूत उवाच सुत गोस्वामी ने कहा निशम्य सुनकर कौशार विना मैत्रिय से उपवर्णितम वर्णित ध्रुवस्य ध्रुव का वैकुंठ पद विष्णु धाम को आधिरोहणम आरूढ़ होना प्ररूढ़ बढ़ा हुआ भाव भक्ति भाव भगवती भगवान के प्रति अधोक्षजे जो प्रत्यक्ष अनुभव से परे हैं प्रष्टुम पूछने के लिए पुनः फिर तम मैत्रिय को विदुरह विदुर ने प्रचक्रमे प्रयास किया। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सुत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा, मैत्री ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्याधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रीय से इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, जैसा कि विदुर तथा मैत्रीय की वार्ता से स्पष्ट है, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि न तो वर्णन करने वाला भक्त कहते अघाता है और न सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि न तो कोई सुनते और न ही कहते थकान का अनुभव करता है, किंतु जो भक्त नहीं है वे सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं। वे जितना ही अधिक सुनते और कहते हैं उतना ही अधिक सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द हैं हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्त इस मंत्र का 2400 घंटे कीर्तन करते थकते नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांग वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक् प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्नारुत्कंठयोस्फुरा कल के अध्याय में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कैसे ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए, कैसे उन्होंने मृत्यु के सर पर पांव रख कर भगवान के द्वारा भेजे गए विमान पर वे आरूढ़ हुए। नंद और सुनंद उनको लेने आए थे और फिर वे भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। तो जब ये वर्णन किया और उसके बाद मैत्री मुनि ने वर्णन किया कि कैसे नारद मुनि ने अपने ही शिष्य का गुणगान किया प्रचेताओं के यज्ञ में, तो उस समय उन्होंने पूछ लिया, विदुर के मन में जिज्ञासा हुई। तो अब इस अध्याय में जैसे हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं, सुत गोस्वामी कथा को कहते हैं कि जब मैत्री मुनि ने बता दिया तो विदुर शांत नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हो गए कि ठीक है बहुत हो गया। तुरंत उनके मन में प्रश्न आया कि आपने प्रचेताओं का वर्णन किया कि आगे चलकर नारद मुनि ने इसका गुणगान प्रचेताओं के यज्ञ में किया, तो प्रचेता कौन है? नाम तो सुना नहीं, ध्रुव महाराज का सुना और ये प्रचेताओं का आपने वर्णन कर दिया अचानक, तो प्रचेता कौन है? वैसे मैत्री मुनि को क्या आवश्यकता थी कि वो प्रचेताओं का वर्णन करते? मैत्री मुनि केवल कह सकते थे कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज का गुणगान किया बस, कि उन्होंने कहा प्रचेताओं के यज्ञ में। अब विदुर जानते नहीं थे प्रचेता कौन है, तो क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता ये थी कि मैत्री मुनि देख रहे थे कि कितने आतुर हैं विदुर, कितने ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि कभी कई बार हम लोग देखते हैं सुप्त गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, मैत्री मुनि बस किसी चीज को हल्का सा कहकर छोड़ देते हैं और फिर जो सुनने वाला है श्रोता वो तुरंत कहता है, चाहे वो परीक्षित महाराज हों, शौनक आदि ऋषि हों या विदुर हों, कि अरे अरे रुकिए रुकिए, ये आपने कह दिया इसको समझाइए। तो ये भागवत सुनने की विधि है कि भागवत को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और हमारे मन में कोई जिज्ञासा आए तो उसको हमें उसका समाधान करना चाहिए, तब भागवत हृदय में प्रवेश करेगी। तो इसीलिए भागवत सुनना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या सुनना चाहते हैं वही हमारे कानों में प्रवेश करता है, वही हमारे हृदय में जाता है। एक समय दो व्यक्ति एक सड़क से जा रहे थे, बहुत व्यस्त सड़क थी, ट्रैफिक की आवाज आ रही थी, गाड़ियों के जाने की आवाज आ रही थी, लोगों की आवाज आ रही थी। तो अचानक एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि कहीं पर भंवरे की आवाज आ रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ इतने ही ट्रैफिक में इतना कहाँ भंवरे की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है? मैंने कहा, नहीं कहीं ना कहीं है, यहीं आसपास कहीं है। तो उसने कहा, नहीं ये सब तुम्हारे हिंदी में कहते हैं कान बज रहे होंगे, है नहीं। उसने कहा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे देखने लगा, हाँ इधर से आ रही आवाज़। धीरे धीरे गए और देखा कि वहाँ पर गंदगी के बीच में थोड़ा सा वहाँ पर हरे हरे पत्ते थे और उनके ऊपर एक भंवरा बैठा हुआ आवाज़ कर रहा था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम्हारे तो कान बहुत बढ़िया है, इतने सारी आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, इसकी आवाज़ में तुमने ये कैसे सुन लिया, तुम्हें विशेष शक्ति है। उसने कहा, कोई विशेष शक्ति नहीं। तो उसने कहा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, बात यह है कि दरअसल जो हम सुनना चाहते हैं वही हमारे कान में प्रवेश करता है। उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं मैं भी तो आपके साथ था, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो उसने कहा, देखना चाहते हो? कहा हाँ। तो वे लोग फिर सड़क पर आए और उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, पैसे, और उसने इसे सड़क पर फेंक दिए। तो सड़क पर गिरने से आवाज़ हुई तन तन, जो भी पैसे गिरने की। तो उन लोगों ने देखा कि जहाँ वो खड़े थे उसके करीब 20 फुट एरिया में जितने भी लोग थे सब घूमकर देखने लगे, कहीं मेरा पैसा तो नहीं गिर गया। तो उन्होंने कहा, देखा अभी भी हम लोग उसी आवाज में हैं, वही गाड़ियों की आवाज आ रही है, वही लोगों की आवाज आ रही है, लेकिन एक जरा सा सिक्का गिरा सब घूमकर देख रहा है। क्यों? वो लोग वो सुनना चाहते हैं। इसी तरह हमारा श्रवण होना चाहिए। जब हम भागवत सुने तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या श्रवण करना है, कैसे सुनना है। इस भागवत कथा से, आज की कथा से मैं अपने जीवन के लिए क्या लेके जा रहा हूँ, इसको सुनकर मैं अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकता हूँ, ये भागवत सुनने का तरीका है। कि भागवत हम सुने, भगवान की कथाएं हैं भागवत, तो निश्चित हृदय को शुद्ध करने वाली हैं। लेकिन साथ साथ भक्ति में प्रगति के लिए ये भी अनिवार्य है कि भागवत के इन श्लोकों, इन तात्पर्यों से जो प्रभुपाद ने दिए हैं, ये प्रभुपाद के निर्देश हैं हम सबके लिए। तो हर रोज जब हम भागवत श्रवण करें तो इस आतुरता से, जैसे विदुर की आतुरता दिख रही है, विदुर काफी समय से सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कपिल मुनि के पहले भी उन्होंने कितने सारे कथाओं को सुन लिया, फिर अभी भी इस स्कंद में भी हम देखते हैं दक्ष की कथा हो गई और ध्रुव महाराज की कथा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदुर को आंखें बंद हो गई कि बस बहुत हो गया, मैत्री मुनि कितनी देर से सुना रहे हैं। विदुर एकदम जरा से उन्होंने वर्णन किया, प्रचेताओं के यज्ञ में नारद मुनि ने कह दिया, विदुर ने तुरंत रुकिए रुकिए, प्रचेता कौन है? अब ये प्रचेता ध्रुव महाराज के ये कई आगे वंशज आने वाले, ध्रुव महाराज के वंश में ही आगे आने वाले या आए हैं। तो अर्थात नारद मुनि ने जब वर्णन किया तो बहुत समय बाद किया था, तो इसीलिए मैत्री मुनि ने जानबूझकर वो एक शब्द कह दिया, देखने के लिए कि विदुर आतुरता से सुन रहे हैं या आंख बंद करके सो गए। अगर विदुर सो गए होते तो उनको क्या पता लगता प्रचेता कौन है, कुछ पूछते नहीं। तो इसी तरह भागवत का श्रवण बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए। तो ऐसे विदुर ने प्रश्न किया कि आपने प्रचेता बताए, प्रचेता कौन है, किसके पुत्र है और क्या उन्होंने कार्य किया जो कि नारद मुनि जैसे महान भक्तों ने जाकर उनके यज्ञ में ध्रुव महाराज का गुणगान किया। नारद मुनि तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नारद मुनि तो वो हैं जिन्होंने पंचरात्र विधि दी है। ऐसा विदुर कहते हैं मैत्री मुनि से कि नारद मुनि ने तो पंचरात्र विधि दी है, वो भगवान की भक्ति करना जानते हैं। पंचरात्र विधि क्या है? पंचरात्र विधि वो विधि है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो हमें सिखलाया जाता है, नारद मुनि सिखलाते, नारद मुनि ने इसको लिखा है। तो नारद मुनि सिखलाते कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, तो नारद पंचरात्र कहा जाता है उसको। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे आंदोलन में हम लोग दो विधियों का पालन करते हैं, एक जिसे भागवत विधि कहते हैं। भागवत विधि का अर्थ है श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, ये भागवत विधि है। और दूसरा पंचरात्र विधि। तो हमारे आंदोलन में इन दोनों को समानता से पालन किया जाता है और जिससे भक्त की प्रगति होती है आध्यात्मिक स्तर पर। तो इसीलिए दोनों चीजें आवश्यक है। तो पंचरात्र क्या है? पंचरात्र मूलतः भगवान के विग्रह की सेवा का वर्णन किया गया है कि कैसे विधि होनी चाहिए, कैसे भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, ये सारा उस पंचरात्र में दिया गया है। क्या क्या नियम होने चाहिए, पुजारी को क्या मंत्र बोलने चाहिए, कैसे उसकी दीक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हमारे आंदोलन में जब हरिनाम दीक्षा दी जाती है तो हरिनाम दीक्षा के समय हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, इसका जप करो, श्रवण करो, ये भागवत विधि है। और फिर जब भगवान के विग्रह की सेवा का अवसर आता है तब हम लोग ब्राह्मण दीक्षा जिसे कहते हैं उसको दिया जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। ये पंचरात्र विधि के अनुसार है। वैसे भागवत विधि अपने आप में पूर्ण है हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए, लेकिन जब विग्रह सेवा की बात आती है तो पंचरात्र विधि का पालन करना होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं विग्रह सेवा में कई नियम होते हैं, हम लोग अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते, भगवान के मंदिर में या भगवान के गर्भगृह में अंदर जाना है, स्नान करना होता है, शुद्ध कपड़े पहनने होते हैं, आचमन करना होता है, मंत्र शुद्धि करनी होती है, भूत शुद्धि करनी होती है, उसके बाद प्रवेश किया जाता है, ऐसे ही सीधे प्रवेश नहीं होता, ये पंचरात्र विधि है। तो इसीलिए इन दोनों विधियों का पालन अनिवार्य है। तो विदुर ने कहा कि ऐसे ये पंचरात्र को लिखने वाले इतने महान भक्त, इन्होंने गुणगान किया, मैं सुनना चाहता हूं। तो फिर मैत्री मुनि ने ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन करना प्रारंभ किया। वंशजों का वर्णन कैसे किया? उन्होंने कहा कि ध्रुव महाराज पे जब चले गए तो उनका जो पुत्र था उत्कल, उनका जो पुत्र था उत्कल, वो बचपन से ही विरक्त व्यक्ति था। देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि बालक बचपन से विरक्त होता है, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में निश्चित भगवान की भक्ति की होगी, योग अभ्यास किया होगा, इसीलिए बचपन से बालक विरक्त रहता है। तो विरक्त थे और जैसे जैसे बड़े हुए भगवान की भक्ति उन्होंने तीव्रता से की, ऐसा उनके बारे में वर्णन है कि वो पूर्ण आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। वे भगवान को सर्वत्र देखते थे और सब चीजों को भगवान में देखते थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो व्यक्ति सर्वत्र सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है वो मेरी भक्ति कर सकता है। तो उत्कल ऐसे भक्त थे जो सब में देखा करते थे भगवान को और सब जगह भगवान को ही दर्शन करते थे, और इसीलिए उनको कोई आसक्ति नहीं थी किसी चीज में। बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो मूर्ख हैं, तो अपने आप को उन्होंने मूर्ख बनाए रखा, ज्यादा कोई कार्य नहीं करते थे, ऐसा लगता था कि लोग तो मानते थे कि ये पागल है। कभी कभी होता है ना, किसी बच्चों को देखकर कहते हैं, बड़े होते जाते तो आदमी पागल है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे जड़ भरत भी जब अपने घर में रहते थे तो ऐसे रहते थे, इसीलिए जड़ भरत हो गया उनका नाम। जड़ मतलब जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धू है, पागल है, इसे ऐसे व्यक्ति को जड़ भरत। तो इसी तरह उत्कल भी रहा करते थे। देखिए ये दो प्रकार के लोग सुखी रहते हैं इस जगत में, एक जो सही में पागल है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपनी दुनिया में खुश रहता है, वो सोचता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ या दुनिया का राजा हूं इत्यादि, वो खुश रहता है। और दूसरे जो भक्ति में पागल है, बस यही दो लोग सुखी हैं, बाकी सारे दुखी हैं इस जगत में। तो जो भक्ति में पागल है उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जैसे महाराज ऋषभ देव, जब वो चले गए भगवान में ध्यान करते हुए सड़कों पर जाते थे, उनके कपड़े फट गए, वो ऐसे ही कहीं गिरे रहते थे, कोई उनको अपनी बाहरी चेतना नहीं थी। क्यों? क्योंकि दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। जड़ भरत, कोई बाहरी चेतना नहीं थी, उनको उठाकर ले जा रहे हैं, उनको बलि देने वाले हैं, उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो इसीलिए ऐसे पागल होने की कामना हम सबको करनी चाहिए। हमारी तकलीफ यही है कि हम ऐसे पागल नहीं हैं, इसीलिए दुखी हैं भक्ति में आकर भी। बस यही चीज है, हमारे कष्ट इसीलिए हैं कि हम उतने पागल नहीं हुए हैं। अभी पूर्ण रूप से भगवान में मन नहीं लगा है, अभी तक हमारी आसक्ति भौतिक जगत में बनी हुई है। अभी भी हम सोचते हैं कि इसी जगत में सुखी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति के बिना सुखी हो जाएंगे, और यही कारण हमारे दुखों का है। तो उत्कल ऐसे रहते थे, तो उसे सबने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है। उनके छोटे भाई थे वत्सर, जो ध्रुव महाराज की पत्नी भरमी से पैदा हुए थे, तो वत्सर को राजा बना दिया कि ये राजा बनेंगे, ये उत्कल तो ये पता नहीं पागल है, वैरागी है, कहाँ जाएगा। और उत्कल भी खुश थे, ऐसे व्यक्ति बहुत खुश होते हैं जब उनको कोई तंग नहीं करता। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी, वो शौचालय के पास जाकर वहां बैठकर जप किया करते थे, क्योंकि बड़ी गंदी बदबू आती थी, कोई जाता नहीं था वहां पर, आराम से जप करते थे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो जहां अगर वैसे करते तो लोग आते रहते थे, बाबा जी आशीर्वाद दो, बाबा जी ये दो, तो इसलिए चले जाते थे। तो ऐसे लोग खुश रहते, उत्कल बड़े खुश थे, अच्छा हुआ राज्य नहीं मिला। तो वत्सर राज्य बने, राजा बने, और फिर उनके वंशजों का वर्णन करते हैं कि उनके 5 वंश बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो चाक्षुष कहलाया, जो मनु बने, छठे मनु, चाक्षुष मनु। और चाक्षुष के पुत्र हुए अंग महाराज। अब देखिए, फिर से अभी अभी परीक्षा ली थी मैत्रेय मुनि ने, अब फिर से ले रहे। तो उन्होंने बड़े संक्षेप में कथा कह दी। उन्होंने कहा कि वो अंग हुए, अंग के पुत्र हुए वेण, और वेण को अंग महाराज चले गए दुखी होकर, और जो वेण थे वेण को ब्राह्मणों ने मार दिया, और फिर उनके हाथ का मंथन करके पृथु महाराज को प्रकट किया। चुप हो गए, बस बोल दिया। विदुर ने बोला, अरे ये क्या कहा, कुछ समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा, एक मिनट, ये तो जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो पहले 5 श्लोकों में तो हम देखते हैं कि विदुर ने प्रचेताओं के वर्णन किया, और 20 श्लोक तक ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन हो रहा है। और अब जब ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ऐसे पृथु महाराज हुए, तो अचानक अब 21वें श्लोक में विदुर रोक देते हैं, क्योंकि अब विदुर को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? पहला आश्चर्य विदुर को हुआ कि अंग महाराज जैसे महान व्यक्ति जो इतने बड़े कुल में आ रहे हैं, और वो बहुत बड़े भक्त थे अंग महाराज, उनके एक ऐसा पुत्र कैसे हो गया जो पापी निकला, वेण। ये तो आश्चर्य की बात है। चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन की कली से चंदन खिलना चाहिए, कांटों का पेड़ नहीं आता है। तो फिर ये कैसे हुआ कि मान लीजिए कोई कहे, जैसे आम का पेड़ वृक्ष होता है, तो आम का अगर बीज बोएंगे तो आम का ही वृक्ष आएगा, नीम का पेड़ तो नहीं आएगा। तो ये आश्चर्य था विदुर का कि ये आम के पेड़ से ये नीम का पेड़, ये कड़वा कहाँ से आ गया। ये वेण जैसा पापी, जिसको आपने कहा कि बड़ा पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था, तो ऐसा कैसे हुआ? ये पहली चीज कि अच्छे कुल में अच्छे माता पिता की ये बुरी संतान कैसे हो गई। दूसरा आश्चर्य उनका था कि ब्राह्मणों ने कैसे ये हत्या का पाप कर दिया, एक राजा की हत्या कर दी ब्राह्मणों ने। तो ये भी बड़ा आश्चर्य। और तीसरा आश्चर्य उनका ये था कि साधारणतः जो राजा होता है उसको तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, सारे जितने प्रजा होते हैं उसका पालन करते हैं, तो ऐसा क्या कर दिया उसने कि सारी प्रजा ने धिक्कार दिया, उसको नकार दिया। तो ये आश्चर्य की बात, बोले अब आप इसको सुनाइए। तो उस समय मैत्री मुनि फिर से सुनाने लगे। तो देखिए मैत्री मुनि ऐसे बीच बीच में परीक्षा लेते रहते थे कि सो तो नहीं गया, आंखें बंद तो नहीं हो गए, तो इसलिए कुछ कहते थे जरा सा तो विदुर तुरंत कहे नहीं 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 आपने ऐसा, अच्छा ठीक है आंखें खुली हुई हैं अभी तक तुम्हारे। तो ऐसे विदुर ने प्रश्न किया कि ये कैसे हो गया, कृपया इसको बताइए। तो तब वो कहने लगे। तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है जो मैत्री मुनि विदुर के उदाहरण से हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि शिष्य को तो जागरूक होना ही चाहिए, श्रोता को तो होना ही चाहिए, लेकिन जो वक्ता होता है, जो गुरु होते हैं, वो भक्ति के रहस्यों को तब प्रकट करते हैं जब शिष्य के हृदय में आतुरता होती है। तो इसलिए ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो गुरु हैं वो ज्ञान दे नहीं सकते, ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन जब भक्त के हृदय में, शिष्य के हृदय में आतुरता होती है तब वो उस ज्ञान को, ज्ञान के रहस्यों को खोलते हैं, भक्ति के रहस्यों को खोलते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम। तो भगवान ने अर्जुन को कहा ये जो विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं ये बड़ा गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य क्या है, सब तो कह दिया भगवान ने, भगवद गीता छाप दी, प्रिंट होकर सब जगह बट रही है, गुह्य ज्ञान क्या है भगवद गीता का, क्या गुह्य दिया भगवान ने, सबको तो बता दिया, सब जगह पता है, 5000 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं लोग, आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर गुह्य था तो छुपा कर रखना चाहिए था, कान में बोलना चाहिए था, इतनी जोर से सबके सामने कहा, व्यासदेव ने लिख दिया, तो क्या गुह्यतम है। गुह्यतम ये है कि भगवद गीता के श्लोक गुह्य नहीं है लेकिन उनका सार, उनका तात्पर्य गुह्य है। इसीलिए हमें आचार्य चाहिए जो उसको समझाएं। तो एक गुरु तब ज्ञान देता है जब शिष्य आतुरता दिखलाता है, नहीं तो ज्ञान नहीं, वो थोड़ा बहुत कह देता है। जैसे कई धर्म हैं जिनमें कहा जाता है कि हमारे धर्म प्रचारक ने तो ये सब नहीं कहा, हमारे जो गुरु हुए हमारे धर्म के उन्होंने ये नहीं कहा कि विग्रह सेवा करनी चाहिए या इत्यादि, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं कहा, ऐसा नहीं था कि उनके धर्म गुरु जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा आतुरी नहीं है, जो बता रहा हूं वही नहीं सुन रहे हैं, फिर और क्या बताना, इसलिए गुरु चुप हो गए। इसलिए बाइबल में कहा गया है, जीसस ने कहा है, व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑफ मटीरियल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिट। जो मैं भौतिक चीजें आपको बता रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आध्यात्मिक चीजें क्या समझाऊं आपको। अर्थात उन्हें ज्ञान था लेकिन शिष्य में आतुरता नहीं थी, तो क्या बताते वो कि भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, कैसे पंचरात्र विधि होती है इत्यादि। लेकिन जिज्ञासा देखिए हमारे, जब हम शास्त्र देखते भागवत और भगवद गीता, अर्जुन बारंबार जिज्ञासा कर रहे हैं इसीलिए भगवान ने ज्ञान दिया, शौनक आदि ऋषि बारंबार जिज्ञासा कर रहे हैं, सुत गोस्वामी ने भागवत कही, परीक्षित महाराज बारंबार जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये रुकिए रुकिए ये आपने कहा ये नहीं, अंत तक 12वें स्कंद तक परीक्षित महाराज की परीक्षा होती रही, अंत में भी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ली, बस बंद करते करते भागवत। जब हम लोग 12वें स्कंद पे पहुंचेंगे बहुत सुंदर प्रसंग है, उसका वर्णन करेंगे कि उस समय भी, अब तो सब खत्म हो गया, बस भागवत बोल दी उठकर जाने वाले हैं, उस समय भी परीक्षित महाराज की परीक्षा ली उन्होंने, कुछ ऐसा बोला कि परीक्षित महाराज ने तुरंत कहा नहीं 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 ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये परीक्षा चलती रही, और ऐसे ही विदुर की भी परीक्षा हो रही। मैत्री मुनि थोड़ा सा कहते हैं फिर देखते हैं। तो इससे हमें जानना चाहिए कि गुरु ज्ञान तब देते हैं जब हमारे हृदय में आतुरता होती है। तो ऐसे फिर मैत्री मुनि आगे कहने लगे कि कैसे वंशज हुए उनके। तो उन्होंने जब कह दिया तो विदुर ने प्रश्न किया, आश्चर्य प्रकट किया, तो अब विस्तार से वे कथा को कह रहे हैं। तो अंग महाराज से प्रारंभ करते हैं, फिर अंग महाराज के आगे वेण, वेण के आगे पृथु महाराज की कथा वो कहेंगे, और फिर पृथु महाराज के पुत्रों के आगे कथा कहते हुए प्रचेताओं की कहेंगे, क्योंकि प्रचेता ध्रुव के वंशज हैं, इसलिए उनकी कथा तक वो पहुंचेंगे। तो अब वैसे क्योंकि प्रश्न उन्होंने प्रचेताओं का किया था, इसलिए जल्दी से वो बताकर आगे भी जाना चाहते थे। ठीक है, तुमने प्रचेताओं का पूछा ना, इसलिए बता, अंग हुए, अंग के वेण हुए, वेण बड़ा दुराचारी था, फिर अंग महाराज चले गए इत्यादि, लेकिन जब प्रश्न पूछ लिया तो अब विस्तार से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समय अंग महाराज वे यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते हुए जब यज्ञ में आहुतियां डाली ब्राह्मणों ने, तो देवता आए नहीं स्वीकार करने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं ये यज्ञ हुआ करते थे पहले, आजकल की तरह यज्ञ नहीं, कि जब आहुतियां डाली जाती थी तो देवता स्वयं आते थे स्वीकार करने के लिए, ये मंत्र की शक्ति होती थी। तो उस समय आए नहीं, सारे जो ब्राह्मण थे हैरान हो गए। तो ब्राह्मणों ने राजा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें नहीं पता, जो भी यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की गई है बहुत शुद्ध है, अर्थात यज्ञ की सामग्री में कोई गलती नहीं है, जो मंत्र हम लोग उच्चारण कर रहे हैं वो भी उच्चारण सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, और साथ ही साथ हमने कोई भी पूरे यज्ञ करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, कहीं हमने ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान नहीं दिया हो, तो बड़े ध्यान से हम कर रहे हैं फिर भी देवता नहीं आ रहे, क्या कारण है। प्रभुपाद समझाते हैं इन तीनों चीजों के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम मंत्र बड़े अच्छी तरह से बोल रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं यज्ञों में मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप ठीक से नहीं भी उच्चारण करते हैं तो भी ये कार्य करता है, इसलिए इस कलयुग में संभव नहीं है कि हम लोग सही दृष्टि से सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि हमने पूरे यज्ञ करने में कहीं भी कोई असावधानी नहीं की है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के विग्रह की सेवा जो हम मंदिरों में करते हैं ये भी यज्ञ के समान है, इसमें असावधानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हो जाता है। अपराधों की सूचियों में एक होते हैं नाम अपराध, दूसरे होते हैं वैष्णव अपराध, और तीसरे होते हैं सेवा अपराध। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर अन्य जीवों के प्रति की गई गलत कार्य को भी अपराध मानते हैं, तो सेवा अपराध हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम ध्यान से विग्रह की सेवा नहीं करते हैं, तो बड़े ध्यान से पुजारी को भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हो जाता। तो क्या है सेवा अपराध, कैसे हमें इसको बचना चाहिए? बहुत से सेवा अपराध हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने दिए हैं कि क्या क्या सेवा अपराध हैं। तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए? सावधानी पूर्वक भगवान की सेवा करके। जब हम भगवान की सेवा में सावधानी हटा देते हैं, क्योंकि रोज कर रहे हैं इसीलिए हमें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत दक्ष हो गया हूँ, मैं 15 मिनट में ड्रेसिंग कर देता हूँ, 5 मिनट में भोग लगा देता हूँ इत्यादि इत्यादि, तो ये जब आ जाता है तो सेवा अपराध शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप असावधानी से करते हो। तो इसलिए हमें बड़े सावधानी से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, ये जानते हुए कि हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को करना चाहिए। तो जैसे जब पुजारी सेवा करते हैं तो भगवान को श्रृंगार करते समय बड़े ध्यान से कि कहीं पिन उनके शरीर में चुभ नहीं जाए, इसका ध्यान रखा जाता है, या फिर अन्य कोई भी सेवा, भगवान को भोग लगाते हुए ठीक से उनको हम आमंत्रित करें, ठीक से मंत्रों का उच्चारण करें, तो बड़ी सावधानी से सेवा होनी चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हो जाते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो ऐसे जब उन्होंने कह दिया तो राजा ने फिर कहना शुरू किया। वैसे राजा ने दीक्षा ले रखी थी यज्ञ की, बोलना नहीं था, लेकिन उन्होंने अनुमति ली फिर ब्राह्मणों से और फिर बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये क्यों है, आप बताइए, आप लोग, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि देवता मेरे यज्ञ में आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे। तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, इस जन्म में तो आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण आपके पुत्र नहीं हुआ है और इसीलिए देवता आ नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, बोले आप ये यज्ञ बाद में कीजिए, पहले पुत्र के लिए यज्ञ कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि अगर भगवान आएंगे आपके यज्ञ में तो सारे देवता अपने आप आ जाएंगे। ब्राह्मण कहते हैं देवता तो सब अधीन है, बॉस आएंगे तो सबको आना ही पड़ेगा पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा आप भगवान को बुलाइए, ये सब देवताओं को छोड़ दीजिए, अब भगवान को बुलाइए, ये तो सब पीछे पीछे आएंगे। तो फिर उस समय उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया और फिर यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष आए जिन्होंने पायसम दिया और वो पायसम उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। अब वर्णन ऐसा है कि अब देखिए, अब तक हम लोग जो देख रहे हैं वर्णन कि अंग महाराज जो बहुत बड़े भक्त थे उनका पुत्र होने वाला है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष ने आकर पायसम दिया जिसको सुनीता ने ग्रहण किया और उससे वो गर्भवती हुई और फिर आगे चलकर वो संतान को जन्म देंगी। तो अर्थात यज्ञ करके संतान को उत्पन्न किया इतने महान भक्त ने, फिर भी वो असुर निकला या क्रूर निकला, वेण। तो इसका क्या अर्थ है, प्रभुपाद समझाते हैं कि कभी कभी भगवान ये योजना करते हैं। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति जल्दी से विरक्त हो जाए, तो ऐसी पत्नी और ऐसे बच्चा दे देते हैं कि व्यक्ति अपने आप जीवन से विरक्त हो जाता है। जैसे उनकी पत्नी सुनीता जो अंग महाराज की पत्नी थी, वो मृत्यु की पुत्री थी। हमने पहले, आपको ध्यान होगा, ब्रह्मा जी से कैसे कैसे अधर्म अधर्म से आगे उत्पन्न होते हुए मृत्यु तक आए थे, फिर निरय और यातना इत्यादि। तो मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, जिनसे विवाह किया था अंग महाराज ने। तो कारण बताने लगे कि क्यों जो उनका पुत्र हुआ, तो जब पुत्र हुआ तो उसने अपने नाना के गुणों को लिया। ऐसा कहा जाता है कि जो पुत्र होता है वो माँ के गुणों को लेता है और पुत्री पिता के गुणों को लेती है। तो इसीलिए अपनी माँ की तरफ से जो गुण थे, अर्थात उनके जो नाना थे, जो मृत्यु अर्थात अधर्मी थे, उन अधर्म को उन्होंने ले लिया वेण ने। तो इस कारण से वो अधर्मी हुए, क्रूर हुए। वैसे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे कि अंग महाराज जल्दी विरक्त हों। अगर बहुत अच्छा पुत्र दे देते या बहुत अच्छी पत्नी दे देते तो फिर वो घर को नहीं त्यागते। तो ऐसे वो पुत्र हो गया और फिर जब वो बड़ा होने लगा, बड़ा ही क्रूर था पुत्र, चला जाता था जंगल में, प्राणियों को मारता था, बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चों की हत्या कर देता था, इतना क्रूर। बताइए, हत्या करना छोड़ा, ठीक है मारना वारना ठीक है, भीम भी थोड़ा प्रेम करते थे अपने भाइयों से, लेकिन मारा नहीं उन्होंने, ये तो मार डालता था, इतना क्रूर। तो परेशान हो गए अंग महाराज, बड़े दुखी हो गए, बहुत समझाया, बहुत डांटा, सुधरा नहीं। तो एक समय वो बैठे सोचने लगे अंग महाराज की, ये क्या हो गया। और फिर उस समय सोचने लगे कि वो लोग सुखी हैं जिनके पुत्र नहीं हैं, ऐसे पुत्र हो जाए अच्छा, वो लोगों ने भगवान की भक्ति की होगी बहुत। देखिए अंग महाराज क्या कह रहे हैं, उन लोगों ने भगवान की बड़ी भक्ति की होगी जिनके पुत्र नहीं हैं। ये पुत्र हो के तो सारा जीवन बर्बाद हो गया मेरा, ये बहुत एक जगत है। जिनके पुत्र नहीं है वो रोते रहते हैं पुत्र के लिए, जिनके पुत्र हैं वो पुत्र है इसीलिए रोते रहते हैं, है ना। ये भौतिक जगत है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं। लोग सोचते हैं पुत्र होने से बहुत सुख होगा, पुत्र होने पर मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पुत्र बड़ा होकर घर से बाहर निकाल देता है, बूढ़े हो गए हो चले जाओ, तो इसीलिए कष्ट। तो वो सोचने लगे वंग महाराज कि वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके पुत्र नहीं होता, कम से कम ये कष्ट तो नहीं सहना पड़ता उन्हें। और फिर वो कहते हैं कि अगर एक बुरा पुत्र होता है तो वो क्या क्या करता है, वो बताते हैं कि एक बुरा पुत्र होता है ये पापमय प्रतिष्ठा का कारण बनता है, मतलब में गलत प्रतिष्ठा हो जाती है, पिता को बुरा अपमान होता है, साथ ही साथ वो अधर्म करता है, अधर्म करने से फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे पुत्र होकर तो मैं बहुत दुखी हो गया हूं, क्यों ऐसा पुत्र हुआ। और फिर अंत में वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं ये सब उन्होंने सोच लिया, फिर वो सोचने लगे कि नहीं, एक बात है, बुरा पुत्र होना भी अच्छा है, क्योंकि बुरा पुत्र होगा तभी तो मैं अनासक्त होऊंगा, अच्छा पुत्र हुआ तो आसक्त रहूंगा, बुरा पुत्र अनासक्ति को लाता है। तो देखिए ये भगवान की योजना, भगवान किसी किसी को कभी बुरा पुत्र दे देते हैं, क्यों, कि जल्दी अनासक्त हो जाए, आसक्त नहीं रहे इस जीवन में, क्योंकि पुत्र अच्छा होगा, बड़ा अच्छा पढ़ाई करेगा, बड़ा अच्छा धन कमाएगा, अच्छी पत्नी लाएगा, अच्छे बच्चे होंगे, तो फिर वो लगे रहेंगे पूरे जीवन, जैसे वो नारद मुनि और कैलाश की कथा है ना, तो नारद मुनि एक व्यक्ति कैलाश उसको कहने जाते हैं कि भाई अरे चलो थोड़ी भक्ति करो, कैलाश ने कहा थोड़ा सा रुको, अभी मेरे बच्चों ने का विवाह नहीं हुआ है, बस विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया, नारद मुनि आए कैलाश अब तो भक्ति करो, कैलाश ने कहा अभी नहीं, अभी तो उनका विवाह हुआ है, अभी तो उनकी संतान हो जाए, फिर संतान भी हो गई, नारद मुनि ने कहा कैलाश अब तो भक्ति करो, कैलाश ने कहा अभी नहीं, अभी तो बच्चे बड़े होने, कौन खिलाएगा इन्हें, इनको खिलाना है, इनको बड़ा करना है, समझाना है, ठीक है वो भी हो गया, कैलाश अब तो भक्ति करो, कैलाश कहाँ भक्ति करने वाले। एक दिन नारद मुनि आए, कैलाश कैलाश ढूंढ रहे, कैलाश नहीं है, नारद मुनि ने देखा कहाँ गए, अरे कैलाश, तो पीछे से आवाज आई नारद मुनि मैं इधर हूँ, नारद मुनि ने देखा एक सांप था, अरे कैलाश तुम्हें क्या हुआ, तो कैलाश मर गया, लेकिन मरने के बाद सांप के रूप में वहीं प्रकट हुआ, क्यों, अरे मेरे बच्चे ध्यान नहीं रखते पैसे का, कोई ले जाएगा इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा जीवन बदल गया लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदला, भक्ति नहीं हुई। तो यहाँ अंग महाराज सोचने लगे कि अच्छा है बुरा पुत्र है, ताकि बहुत जल्दी अनासक्त हो जाऊं मैं इस जगत से। और फिर ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत उसी रात को घर त्याग दिया, बड़े दुखी हो गए ऐसा पुत्र को प्राप्त करके, उन्होंने ग्रह त्याग दिया और चले गए कहीं पर वन में। अब अगले दिन सुबह सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गए महाराज, कहाँ है महाराज, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं, सारे लोग ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढ ढांड कर आए, कहीं नहीं मिले महाराज। तो फिर अंत में दुखी होकर वापस आए राज्य में और सबने ऋषि मुनियों से कहा कि अंग महाराज तो मिले नहीं कहीं, अब क्या किया जाए आगे। तो अब आगे क्या होगा ये अगले अध्याय में मैत्रेय मुनि बताते हैं। हरे